I'm Annie Apple, and I'm here to invite you to come and listen to my new podcast series, Raising a Pro. It's the most intimate sports-related conversations you will hear. Each week, we explore the journeys of some of your favorite NFL players through the eyes of those that know them best. From Joe Burrow, DeAndre Hopkins, Myles Garrett, Ezekiel Elliott, Nick and Joey Bosa, just to name a few. With exclusive insights and information, we leave no stone unturned. Subscribe now to Raising a Pro on your favorite podcast app.
Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original.
ये पॉडकास्ट एक HD Smartcast original है। HD Smartcast भारत का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ पॉडकास्ट प्रोड्यूसिंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, मुझे पता है वृंदावनी सारंग का ये सफर आपको भी मेरी ही तरह एक अलग ही दुनिया में लेकर गई, जहां बारिश भावनाओं के साथ साथ सुरीला भी है और कई सारी बातें यादों का खजाना बन गई। जब मैंने ये पॉडकास्ट सीरीज को बनाने का सोचा था तो लगा था कि कुछ नया होगा, रोचक भी, लेकिन मुझे भी तब अंदाजा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा और खूबसूरत ट्रेजर बॉक्स मिल रहा है जिसका नाम बना वृंदावनी सा रंग, जिसको खोलते ही नायाब तोहफे मिलते हैं। कहते हैं ना, जेम ऑफ अ पर्सन। मैं खुशकिस्मत रही कि मुझे एक या दो नहीं, इस ट्रेजर बॉक्स में बहुत सारे जेम ऑफ पर्सन मिले, जहां मैंने जब लिखने का सोचा तो सावन, वृंदावन और मेरे इस कॉन्सेप्ट को लेकर कई दिग्गजों का साथ मिला, जैसे विदुषी मंजू सुंदरम जी, श्री सौम्यकांति मुखर्जी और मेरे मित्र सम्राट बैनर्जी। सम्राट ने मुझे जोड़ा श्री चंदन गोस्वामी जी के साथ, जो सीधा वृंदावन से जुड़े और मेरे इस छोटे से ट्रेजर बॉक्स को और अनमोल बना दिया। साथ रहा बेहद खूबसूरत कलाकारों का, जिनको थैंक्स कहना सही नहीं है, बल्कि इतने लाजवाब सुरों को मेरे साथ साझा करने के लिए, ये कोविड का सिचुएशन अगर नहीं होता और वर्चुअल दूरी नहीं होती तो जरूर गले लगाकर कहती खुशामदीद। मुस्कुराइए, क्योंकि आज भी अच्छे लोग हैं दोस्तों। छोटे छोटे ट्रेजर बॉक्स हम सबके पास हैं। इस ट्रेजर बॉक्स को लेके मशरूफ थी ही कि एक दिन इंस्टाग्राम पे मशहूर एक्टर सौरभ राज जैन का पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पर, महाभारत डायरीज के नाम से, जिसमें वो अपने टीवी सीरीज महाभारत के दिलचस्प किस्सों को शेयर करते हैं। पोस्ट को पढ़ना शुरू किया। डायरी की हर स्टोरी लाजवाब, और मजे की बात ये भी है कि मैं वो सीरीज देख भी रही थी टीवी पे लॉकडाउन के दौरान, तो और ज्यादा रिलेट कर पा रही थी। अच्छा, उसी डायरीज में मेरा सबसे फेवरेट पोस्ट आपको पढ़ के सुनाती हूँ, सौरभ का लिखा हुआ। वी आर लिविंग अ डे एंड एज वेयर ऑल ऑफ अस हैव प्रोबेबली लर्न्ड सम ऑफ लाइफ्स टफेस्ट लेसन्स। दिस पैंडेमिक हैज ब्रॉट अस क्लोजर टू आवर फैमिलीज एज वी ऑल फाइंड सोलेस विद इन द कन्फाइंस ऑफ आवर होम्स। रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स हैव चेंज्ड विद द डिस्टेंस एंड विद द टेस्ट ऑफ टाइम, but I was just thinking about the relatability Mahabharat has even in today's day and age.
जैसे ही ये पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सौरभ जितने अच्छे इंसान हैं, उतनी ही खूबसूरत उनकी सोच भी है, और उनकी ये सोच कहीं ना कहीं थोड़ी ही सही, लेकिन मेरे इस पॉडकास्ट सीरीज के साथ मिलती जुलती है।
बस क्या था, मैंने सौरभ से कनेक्ट किया और उन्हें पॉडकास्ट के बारे में बताया। उन्हें काफी अच्छा लगा। मैंने कहा, अगर आप इस पॉडकास्ट में हमारा साथ देते हैं, इस सफर में हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ये सफर तो यादगार हो ही जाएगा, और तो और मेरे इस ट्रेजर बॉक्स में सबसे नायाब हीरा इसको पूरा बना देगा। सौरभ का जुड़ना इस पैंडेमिक के दिनों में जरूर लोगों को एक मुस्कान का तोहफा देगा, और सौरभ इतने ही अच्छे इंसान है कि अपनी सारी व्यस्तता के बावजूद वो राजी हो गए अपनी वही चिरपरिचित मुस्कान के साथ। चूंकि मुझे बातों में बहुत दिलचस्पी है, तो मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना बातों का सिलसिला शुरू करूं सौरभ के साथ।
सुनना दिलचस्प होगा सौरभ की जिंदगी के बारे में और उनके सफर के बारे में। आपने सौरभ के कई इंटरव्यू देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन कभी किस्सों कहानियों के साथ गपशप करते हुए शायद ही सुना होगा। बस फिर क्या, मिलाते हैं सौरभ को फोन। फोन क्यों, अरे भूल गए, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का समय है। पर ये सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी चीजों को डिस्टेंट नहीं रख सकता। तो बात करते हैं सौरभ से।
हाय सौरभ, हाउ आर यू?
मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
मैं भी ठीक हूँ। ये लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपका?
लॉकडाउन आई थिंक वैसा ही जा रहा है जैसे सब लोगों का जा रहा है। बड़े क्राइसिस से हम सब लोग गुजर रहे हैं। एक तरह का क्योस है मन में, बाहर हर जगह, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक हम सब में एक तरह की शक्ति है जो हमें इससे जूझने में मदद कर रही है। तो वैसा ही जा रहा है जैसे सबका जा रहा है।
जी जी, तो सौरभ वैसे तो हम लोग आपको, सब लोग आपके इतने फैन हैं, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी फैमिली को भी जानते हैं, हमने रिधिमा के बारे में भी सुना है, इंस्टाग्राम में हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन मैं आपके आपसे सुनना चाहती हूँ थोड़ा, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आपके दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो आपकी लाइफ एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, क्या कैसा लगता है आपको, कैसे आप अपना स्पेंड करते हैं?
जी मेरी फैमिली में अभी मेरी मॉम है यहाँ पे बॉम्बे में हमारे साथ ही हैं, और मेरी वाइफ हैं, जैसा कि आपके कहा, दो छोटे बच्चे हैं, अभी वो इस महीने 3 साल के हो जाएंगे
20 तारीख
को, और हमारे साथ हमारी एक बड़ी बुआ जी भी रहती हैं, और शी इज ऑलमोस्ट टचिंग 90 नाउ, एंड सो वी ऑल आर स्मॉल फैमिली, और साथ में हमारा एक छोटा सा पेट भी है, उसका नाम वेफर है, जिसको हम अपना फर्स्ट बेबी बोलते हैं। तो ये हमारी छोटी सी फैमिली है।
वाओ, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। सो सौरभ, ये जो एक मैं थोड़ा सा बच्चों के बारे में और बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, मेरी खुद की भी एक छोटी सी बेटी है, तो मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा बात करना चाहती हूँ उसके बारे में कि आपके जो दोनों बच्चे हैं अभी 3 साल के आपने बताया, तो कैसा लगता है ये फादरहुड जो है, ये कैसा लगता है आपको, और मतलब लाइफ डेफिनेटली चेंज होती है, आई एम बीइंग अ मदर, मैं एक माँ हूँ, तो मेरी लाइफ भी काफी चेंज हुई, तो आई एम श्योर कि आपकी लाइफ भी चेंज हुई, तो ये चेंज और ये कैसा लगता है आपको ये?
एक तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शब्द है उसके सही मायने आई थिंक तभी समझ आते हैं जब आप पेरेंट बनते हैं। जब तक वो पेरेंट नहीं बनते तब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पता तो होती है कि रिस्पॉन्सिबल बनना है लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसका मीनिंग मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें पता होता है, लेकिन उसके असल मायने जो होते हैं वो आप तभी फील करते हैं जब आप पेरेंट बनते हैं। आई एम श्योर आपको भी एहसास हुआ होगा जब आपकी बेटी हुई होगी, तो क्योंकि फिर आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, आप सोचते हैं कि आप उनके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्या अच्छा होगा, आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए क्या अच्छा होगा, आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, तो आई थिंक वो एक फीलिंग है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत ही सुकून महसूस होता है मन में जब उनका चेहरा दिखता है सुबह शाम को जब भी, और जब वो आपसे बातें करते हैं, जब आपके साथ खेलते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं अपने आप अपने बचपन में चले जाते हैं। तो मैं उनके साथ अपना बचपन भी जी रहा हूँ और साथ में एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग है लेकिन बहुत बहुत मजेदार है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग फिर से बचपन जीने का एक मौका हमें मिल जाता है बच्चों के साथ, वैसे ही खेलना और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में हम भी कहीं ना कहीं बच्चे बन जाते हैं, तो ये बचपन जो है ये तो डेफिनेटली एक खुशी का पार्ट होता है सबके लाइफ में। तो अगर मैं सौरभ से पूछूं कि सौरभ का व्हाट इज द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, अगर आपको पूछा जाए कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, तो वो क्या होगी?
मेरे हिसाब से या मैं जैसे मानता हूँ, मेरे ख्याल से अल्टीमेट हैप्पीनेस इज पीस, मतलब मन की शांति। अगर आपका मन शांत है, चित शांत है, तो फिर वही ट्रू हैप्पीनेस है। एक्साइटमेंट या कुछ पा लेना या कुछ हासिल कर लेना वो आपको टेंपरेरी हैप्पीनेस दे सकती है, लेकिन अगर आप मन से शांत हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में यू आर जस्ट हैप्पी, और वो हैप्पीनेस ऐसे जताने की या ऐसे दिखाने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप मन से खुश हैं, मन से आप हैप्पी हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, पीस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मन की शांति से ही हैप्पीनेस होता है। ये तो कहीं ना कहीं हम लोग भागा दौड़ी की जो अभी जिंदगी हो गई थी ना ये कोविड से पहले, कि हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर भागते थे और फोन कॉल्स में और मतलब पार्टीज होती थी, इधर उधर जाते थे, तो कहीं ना कहीं वो पीस हम खो रहे थे। और अभी लॉकडाउन में मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कि घर पे हम हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, फैमिली के साथ टाइम दे रहे हैं, तो वो पीस, वो जो एक छोटा सा पोर्शन कहीं खो गया था, वो वापस से कहीं मिल रहा है ना।
जी जी जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम तलाशते हैं हैप्पीनेस और पीस आउटसाइड आवर होम, अपने घर से बाहर हम खोजते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर हमारे अपने रिलेशन जो है, हमारे अपने जो है, अगर वो पीसफुल हैं, अगर वो रिलेशनशिप्स आपको सेटिस्फाई करते हैं, अगर आप उसमें खुश हैं, तो उससे बड़ी शांति और कहीं नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सौरभ, थोड़ी सी बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। आप अभी पटियाला बेब्स आपका चल रहा है बहुत अच्छा, और जैसा कि अगर आपका प्रोफाइल देखे तो आपने बहुत अलग अलग तरीके के किरदार निभाए हैं अपने करियर में। तो नॉर्मली दूसरे अगर सेलिब्रिटीज की बात करें या दूसरे आर्टिस्ट की बात करें, तो वो नॉर्मली खुद को एक जॉनर में रखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब शायद थोड़ा रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन आपका जो है, आपने नजबली अभी ट्राई किया, इसके बाद अभी आप पटियाला बेब्स में हैं, आपने महाभारत किया है, आपने बहुत सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी किए हैं, इसके अलावा आपने मूवीज भी कुछ की है मैंने देखा। तो ये आप बताइए कि क्या आपको अंदर से क्या वो चीज है जो आपको प्रेरणा देती है, कह सकते हैं कि आप डिफरेंट चीजों को ट्राई करते रहते हैं।
देखिए, मैं आपको अपना थोड़ा फ्लैशबैक बताना चाहूंगा। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। अच्छा। वो बाय चांस मेरे साथ हुआ जब मैं अपने सेकंड ईयर कॉलेज में था। अच्छा, और अच्छा। अपने दोस्त के साथ एक ऑडिशन के लिए गया, उसके ऑडिशन के लिए, और वहाँ पे जो ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने मुझे देखा और मुझे ऑडिशन देने के लिए बोला, और मैंने एक क्यूरियोसिटी कहिए उसके लिए मैंने दे दिया कि देखते हैं क्या होगा, ऐसे दे दिया। और फिर दो महीने बाद मुझे कॉल आया, और मैं जब मुझे कॉल आया तो फिर मेरी जो उत्सुकता थी वो बहुत बड़ी। मुझे लगा कि ये तो कुछ, ये आपको अंदाजा होगा कि दिल्ली में आप अगर बड़े हो रहे हैं और अगर आपको टीवी पे काम करने का अगर मौका ऐसे अवसर मिलता है, और खासकर मैं बात कर रहा हूँ 14-15 साल पहले की, उस टाइम पे ऐसे अगर कॉल आता है और अगर आपको पता चलता है कि आप टीवी पे आएंगे, आपको रोल मिल रहा है, तो आप काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ, और फिर मैं बॉम्बे आया। यहाँ पे आने के बाद जब मैंने फर्स्ट शो किया, तब मैं बिल्कुल नया था, मुझे कुछ भी एक्टिंग का नहीं पता था, और जैसा कि मैंने कहा कि बाय चांस वो मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन जब मैं वो कर रहा था, वो शो करते हुए मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैंने ये सोच लिया कि मुझे अब एक्टर ही बनना है। बाय द टाइम वो शो एंड हुआ, मैं अपने हेड में श्योर था कि मुझे अब एक्टर ही बनना है। हालांकि उसके बाद मुझे ब्रेक लेना पड़ा अपने स्टडीज कम्प्लीट करने के लिए, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया। लेकिन वो जो फीलिंग थी कैमरे के आगे आने की, एक अलग कैरेक्टर बनने की, जिसमें सौरभ नहीं है, कोई अलग अलग कैरेक्टर है, वो फीलिंग मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी है, आज तक है, और मैं चाहूंगा कि हमेशा रहे। वही वही फीलिंग जो है वो मुझे ये शक्ति देती है कहिए, या मुझे मोटिवेट करती है कि मैं हर बार कुछ अलग ट्राई करूं, कोई अलग कैरेक्टर बनूं, कुछ अलग करूं अपने लिए, अपने अपने खुद की शांति के लिए या पीस के लिए, या अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो यही वो चीज है जो मुझे हर बार ये मोटिवेट करती है कि मैं कोई अलग कैरेक्टर करूं, कुछ डिफरेंट करूं।
जी जी, बहुत खूबसूरत कहानी है, मुझे आई एम श्योर कि जो सुन रहे हैं उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये सुन के। और जो एक्टिंग वाली बात की, तो मेरा भी एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि सोशल वर्क है, बच्चे जुड़े हुए हैं, आप एक बहुत अच्छे कॉज के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये जो आपने एक्टिंग का एस्पेक्ट बोला सौरभ, ये इतना इन्फ्लुएंसिव है, मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, बच्चों को, कि ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनके पास अगर हम नॉर्मली जाते हैं पढ़ाई करवाने के लिए, तो शायद वो नहीं करना चाहते, क्योंकि दे आर बिजी, यू नो, आप भी देखते होंगे रेड लाइट पे कभी गुब्बारे बेचते हैं, बुक्स बेचते हैं, वो उसी में लगे रहते हैं। तो जब हम उनको फिल्म मेकिंग का वर्कशॉप लेके जाते हैं या कहते हैं कि तुम्हें एक्टिंग करना है, तो वो तुरंत सारा काम छोड़ के चले जाते हैं। तो वहां से हमें भी एक वे आउट मिल जाता है कि हम बच्चों को अपने पास ला सके और उनको फिर आगे का एजुकेशन करा सके। तो एक्टिंग जो फिल्म है, फिल्म मीडिया है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और मुझे लगता है अगर किसी को प्रेरणा देना है या किसी को एजुकेशन के लिए भी आगे बढ़ाना है या कोई भी मैसेज देना है, तो दिस इज द बेस्ट मीडिया।
बहुत बहुत बढ़िया आपने बात करी। और स्टोरी टेलिंग का मायने ही एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये है कि लोगों में लोगों को इंस्पायर कर सके किसी ना किसी तरीके से, वही स्टोरी टेलिंग का मेन मुद्दा था। और आई रियली होप वही रहना भी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे ये मीडिया अभी तो और भी आगे बढ़ रहा है, मतलब अभी तो OTTs भी आ रहे हैं और अलग अलग के प्लेटफॉर्म, ये पॉडकास्ट सीरीज हम कर रहे हैं, इसमें भी बहुत तरीके के स्टोरी टेलिंग चलते हैं। तो मुझे भी लगता है कि इस तरीके से जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो गया है, बहुत ज्यादा नंबर में सीरियल बन रहे हैं, प्रोग्राम्स बन रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा लोग का आउटरीच हो पा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। सौरभ, हमें पता है कि आप, हम लोग आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं और आपके फॉलोअर्स हैं, तो हम देखते रहते हैं आपके सारे एक्टिविटीज को। तो अगर एज एन एक्टर आपकी बात को रख के उसके बाद एज अ पर्सन भी सोचे, तो हम देखते हैं कि आप बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही शांत, आपने पीस के बारे में बात की भी कि बहुत शांत नेचर के आप हैं, बहुत पॉजिटिविटी, शायद इसी की वजह से आप जब मुस्कुराते हैं तो वो पॉजिटिविटी लोग भी रिसीव करते हैं, जो बैठ के देख भी रहे होते हैं टीवी पे, स्क्रीन पे, उनको भी वो पॉजिटिविटी रिसीव होती है। तो सौरभ एज एन आर्टिस्ट हम देख रहे हैं, सौरभ एज अ पर्सन इनसाइड से सौरभ कैसे है ये जानना है।
एज अ पर्सन आई थिंक मैं यही कहूंगा कि मैं बहुत ही गाय नेक्स्ट डोर काइंड का इंसान हूँ, जो आप अपने घर में भी पाएंगे, जैसे आप अपने गली के नुक्कड़ में भी पाएंगे, अपने स्कूल में पाएंगे। इसमें इस सौरभ में कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ बहुत ही अलग तरह का कोई टैलेंट नहीं है, वो एक बहुत ही नॉर्मल साधारण सा इंसान है। लेकिन हाँ, इस सौरभ के ड्रीम्स बहुत हैं। ये जो सौरभ है ये मेहनत बहुत करता है और पूरी कोशिश करता है कि उसको जो भी काम मिले वो काम वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाए। तो बस यही सौरभ है।
जी जी, थैंक यू। और इसके अलावा सौरभ, आप मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहती हूँ, आपका जो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज था महाभारत, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। उसके सारे कैरेक्टर ही बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा सबने अभिनय किया था उसमें। और आपका जो रोल था श्री कृष्ण का, उसको तो लोगों ने मतलब आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब लोग अगर भगवान के बारे में सोचते हैं, अगर इमेजिन भी करते हैं, तो आपका ही जो फेस है वो सबके सामने आता है। इस लेवल का आपने एक प्रेजेंटेशन दिया, इस लेवल का आपने किया। तो वो तो हो गया मतलब सीरीज की बात, जो हमने देखा महाभारत को, लेकिन आप टीम में वहां पे काम करते थे, आप लोग सब साथ में होते थे, इंस्टाग्राम में भी आपकी जो महाभारत डायरीज थी वो भी हमने पढ़ी। तो आप
उसका स्पेशल पार्ट अभी बचा है, वो एक पार्ट आई थिंक परसों मैं डालूंगा, लास्ट पार्ट होगा उसका।
जी जी जी, तो उसमें से ही कुछ खास किस्सा आप शेयर करना चाहोगे, कुछ स्पेशल जो मान लीजिए आपको सबसे ज्यादा यादगार है?
महाभारत में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बहुत यादगार हैं, तो उनमें से किसी एक को बता पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। द एंटायर जर्नी वाज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर जर्नी रही और वो आज तक है, क्योंकि आज तक लोगों का प्यार उस शो की वजह से मिलता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे एनेक्डोट्स हैं जो मैंने महाभारत डायरी में शेयर किया। वो महाभारत डायरी बनाने का मेरा रीजन ही ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो उस दौरान जो एक्सपीरियंसेस थे वो सब मैं शेयर कर सकूं। और उसमें काफी कुछ मैंने शेयर किया है। अभी मुझे अगर आपसे कुछ शेयर करना है तो वो मैंने महाभारत डायरी में भी शेयर किया है। तो महाभारत में वृंदावन का सेटअप हम लोगों ने तैयार किया था जिसमें कृष्णा जी जो है वो ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान सीक्वेंसेस हर एक एपिसोड में आते थे और ये बहुत ही अमेजिंग सोच थी हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी थे जी हैं, उनकी बहुत ही बढ़िया सोच थी कि जब हम महाभारत की बात करते हैं तो ज्ञान वाला पार्ट मोस्टली आता है व्हेन गीता सार हैपन। लेकिन वो चाहते थे कि हर एक एपिसोड अपने आप में कुछ ना कुछ लोगों को बताए जो उनके आज के जीवन में कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है और उससे वो कुछ ना कुछ सोचने पर एटलीस्ट विवश हो जाए। तो वो उनका थॉट था, तो इसलिए वो ज्ञान वाले सीक्वेंसेस हर एक एपिसोड में आते थे। तो उस दौरान वृंदावन का जब वो सेटअप किया था तो उसमें काफी पिजन्स और डक्स और रैबिट्स हम ऐसे सेट के ऊपर लाए जाते थे ताकि वो पूरा वृंदावन का फील दे सके,
नेचुरल फील है।
जी जी जी। तो जब वो ज्ञान वाले सीक्वेंस जो होते थे वो बहुत ही लंबे होते थे, बहुत सारी उसमें लाइन्स होती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि जब हम शॉट ले रहे होते थे और जब बोलना शुरू करो डायरेक्टर एक्शन बोले तो एकदम से जो डस्ट थी वो क्वैक 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 करना शुरू कर दे एक्शन पर थी। फिर उसके बाद हम रुक जाते थे, फिर उसके बाद जैसे डायरेक्टर एक्शन बोले तो अपने आप को एक्शन समझती थी और फिर क्वैक 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 करना शुरू कर देती थी। तो ये काफी बार बार होने लग गया था जिसकी वजह से शूटिंग डिले होने लग गई थी, क्योंकि बार बार आपको कट करना पड़ेगा और एक बार आप कट करते हैं तो फिर से सब कुछ अच्छे से सेटअप करते हैं, फिर से आप स्टार्ट करते हैं। तो बाद में जब ऐसा थोड़ा टाइम हुआ तो कुछ ऐसा ऐसा कुछ लिंक बना मेरे और बत्तखों के बीच।
अच्छा।
कि मैं शुरू करता था अपनी लाइन एक्शन, जैसे मैं शुरू करता था अपनी लाइन तो मुझे एकदम से पता चलता था कि ये अभी फिर क्वैक क्वैक करने वाली है और मैं रुक जाता था चलते शॉट में और वो क्वैक क्वैक करती थी, वो जैसे ही बंद करती थी मैं अपनी आगे की लाइन बोलता था, फिर मैं एकदम से रुकता था वो क्वैक क्वैक करती थी। इट वॉज लाइक दैट। तो ऐसे वो शूटिंग होती थी कई बार, वो बड़ी दिलचस्प
मजेदार, बिल्कुल
मजेदार,
मतलब एक तरीके की जुगलबंदी हो जाती थी आपकी और
जी। और कई बार तो मेरे जो सीन्स होते थे वो मतलब एक आम के डिस्टेंस पे होती थी, मेरे एक आम आधे आम के डिस्टेंस पे वो होते थे, तो बड़ा ही मजेदार एक्सपीरियंस था वो मेरे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो सीन है ना उसके बारे में थोड़ा सा और मैं बोलना चाहूंगी। ये जो ज्ञान वाला पार्ट था ये सच में बहुत क्रिएटिवली एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि नॉर्मली माइथोलॉजिकल सीरियल में ऐसे नहीं था वो, बाद में फिर दूसरे सीरियल्स में भी आ गया वो कॉन्सेप्ट, लेकिन शुरू में आपके सीरियल से ही वो स्टार्ट हुआ था और वो इतना इफेक्टिव था। मतलब आज की डेट में भी अगर मुझे कभी परेशानी होती है या मैं कभी वो होती हूँ लाइक टेंस होती हूँ, वरीड होती हूँ, तो मैं YouTube में ना वही वाला फाइंड करके कुछ ना कुछ सुनने लगती हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ इट इज गोइंग टू हेल्प मी। और आपने उसको इतना इजीली फ्लोट किया था, मतलब इतना इजीली आपने किया था। नॉर्मली ज्ञान इज अ वेरी हैवी वर्ड, बहुत भारी शब्द है ज्ञान, लेकिन आपने उसको इतना, मतलब वो जो कृष्ण का फ्रेंडली लेवल कहते हैं ना, तो आपने इतनी फ्रेंडली लेवल पे उसको लेके आए थे और इतने अच्छे तरीके से आप बोलते थे कि इट्स लाइक वंडरफुल। और ये स्टोरी भी बहुत
जो पूरा क्रेडिट है वो मैं अपने राइटर्स को देना चाहूंगा, उन्होंने शब्दों को इतने अच्छे तरह से पिरोया था कि कई बार जब मैं पढ़ता था तो मुझे गूज़बम्स आ जाते थे। इतनी गहरी बात इतने सरल शब्दों में जो वो लिखते थे मीर हुड्डा जी, उनकी जो राइटिंग थी वो कमाल कमाल की राइटिंग थी उसमें। और मैं अपने आप को बहुत ही यू नो आई फील ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला इतने अमेजिंग टैलेंट के साथ काम करने का।
बिल्कुल सही बात है, अच्छे लोग जुड़ते हैं और अच्छा काम होता है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। तो पॉजिटिव लोग को अट्रैक्ट करते हैं और फिर कुछ अच्छा ही काम बनता है। सौरभ, अगर बात करें नॉट ओनली महाभारत, आपने इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए, आपके ह्यूज फैन फॉलोइंग है, तो बहुत लोगों के फैन मोमेंट्स होते होंगे, बहुत फैन आपको अलग अलग तरीके की शायद मैसेजेस भेजते होंगे या रिक्वेस्ट भेजते होंगे, तो कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, वो कैसा कुछ किस्सा आपको याद पड़ रहा है कि आप बताना चाहते हो हम सबको?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनका जो लव है, एडुलेशन है,
जी
एप्रिसिएशन है, आई रियली फील ब्लेस्ड कि ये सब मुझे उनसे मिलता रहता है। और मेरे पास शब्द नहीं है उनको थैंक यू बोलने के लिए, ईच वन ऑफ देम, बिकॉज मैं सोशल साइट्स में कई बार कमेंट पढ़ता हूँ, काफी चीजें वो लिखते हैं, एडिट्स बनाते हैं। मैं एक पिक्चर अगर लगाता हूँ तो उस पिक्चर के अलग अलग तरीके के पिक्चर बना के वो शेयर करते हैं, तो इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं। और कई बार मुझे लगता है कि मेरा काम अगर अच्छा नहीं भी है तब भी वो इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लो फील कर रहे होते हैं और आप बस उनके कमेंट्स पढ़ते हैं और आपकी स्पिरिट हाई हो जाती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल द व्यूअर्स एंड फैंस एंड जेन्युइन लव दैट वी गेट फ्रॉम पीपल। एंड अगर एक मुझे कुछ शेयर करना हो आपसे कृष्णा के टाइम का ही, तो मुझे याद है उमरगांव में जब हम शूटिंग कर रहे होते थे, तो जहाँ पे मैं रेडी होता था मेकअप रूम में, उसके बाहर कई बार ऐसे बहुत भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। और उसमें हमारे जो प्रोडक्शन के जो लोग थे उनको मुझे बकायदा ऐसे थोड़ा सा रास्ता बना के ऐसे ले जाना पड़ता था। तो एक दौरान आई रिमेम्बर एक फैमिली थी, हस्बैंड थे, वाइफ थी, और उनके हाथ में छोटा सा इन्फेंट बेबी था, बहुत ही प्यारा सा। और वो काफी देर से, मुझे बाद में पता चला कि वहां पे खड़े हुए थे, मुझे उसके बहुत बुरा भी लगा, लेकिन वो वेट कर रहे थे कि कब मैं बाहर निकलूं, और वो चाह रहे थे कि मैं बेबी का नाम नाम रखूं। और ये मुझे दिल को छूने वाली बात थी। और हालांकि मैंने उनसे यही बोला कि आप इनके माता पिता हैं, मैं तो खाली एक एक्टर हूँ जो कैरेक्टर निभाता हूँ जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, लेकिन नाम आपका आपको ही रखना चाहिए। नाम उन्होंने ही रखा, लेकिन मैंने बेबी को गोद में लिया, एंड आई रियली फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट डे।
वेरी नाइस, रियली वेरी टचिंग, मतलब बहुत ही टचिंग स्टोरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन ऑडियंस है वो है ही इतनी इमोशनल, मतलब इन एनी वे वो इतने इमोशनल है कि वो अपने जो हीरोज हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी नाइस। मतलब और मैं ये भी कहूंगी कि आप लोग ये प्रोफेशन में जो भी आप लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जिनको ऑडियंस इतना प्यार करते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी लकी कि उनको इतना प्यार मिलता है लोगों का। दिस इज वेरी ट्रू, लोग बहुत कनेक्ट करते हैं। तो थोड़ी से अलग लेवल की चर्चा भी करते हैं। सौरभ, ये बताइए कि आपको खाने खाने में कितना इंटरेस्ट है, मतलब फूड की अगर बात किया जाए तो सौरभ को खाने खाना पसंद है कितना?
खाना बहुत पसंद है, और बहुत बहुत कभी कभी अतरंगी खाना भी बहुत पसंद
अच्छा
है। लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है
जी।
लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या खाना अच्छा लगता है, तो मुझे एक्चुअली सभी कुछ अच्छा लगता है जो मेरी मॉम बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो माँ बनाए और मुझे अच्छा ना लगे। तो मेरे को अगर आप पूछेंगे कोई एक चीज या दो चीज या ऐसा कुछ हो, तो ऐसा ऐसा नहीं है। I like everything that my mother, that my mother makes.
True, true. मम्मी के हाथ का खाना तो सबको ही बहुत पसंद होता है, क्योंकि एक अलग ही लगाव होता है। पता है कैसे बनाती है मम्मिया की, उसका टेस्ट ही अलग होता है।
आई नो, और वो वाला टेस्ट
कहीं और नहीं आएगा।
का अपना यूनिक होता है, हर एक का अपने लिए यूनिक होता है, हर एक का।
एकदम एकदम एकदम। तो आप तो दिल्ली के हैं, तो आई थिंक आपको राजमा चावल भी पसंद, मतलब पसंद के लिस्ट में राजमा चावल होना चाहिए।
राजमा चावल, छोले चावल, आलू, वो आलू की पूरी, कढ़ाई की पूरी, चना, एवरीथिंग, आई लव ऑल ऑफ दैट, पनीर, एनी टाइम।
वाओ वाओ, तो मतलब फूड में काफी इंटरेस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटियाला वेव्स में आप शेफ का रोल कर रहे हैं, आपका उसके तरफ झुकाव भी है।
हाँ खाने में झुकाव है, बनाने में झुकाव
नहीं बना, अच्छा बनाने में बिल्कुल झुकाव नहीं है। तो लॉकडाउन में थोड़ा बहुत ट्राई नहीं किया कुछ?
नहीं किया, और मैंने शेयर भी किया था इंस्टा पे, बच्चों के लिए बेक वेक किया था कभी, ऐसे ट्राई किया था यूट्यूब पे वीडियोस देख के, आई ट्राई कपल ऑफ टाइम।
वाह वाह, वेरी नाइस। सौरभ, अगर बात करें फ्यूचर प्लान्स की, कि आप कैसे देख रहे हैं अपने फ्यूचर को, कि रोल्स के बारे में अगर बात करें, आप इतने सारे डाइवर्स रोल ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हर एक्टर का कुछ ना कुछ होता है फ्यूचर प्लान या फिर कुछ सोच रखते हैं, तो आप क्या प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, या किस तरीके के रोल के बारे में सोच रहे हैं आप?
देखिए अभी तो जो सब कुछ चल रहा है कोरोना वायरस में, नॉट क्वाइट सेफ टू गो आउट, तो एंड मेरे घर में सीनियर सिटीजन भी हैं, बेबीज भी हैं, तो आई एम टेकिंग माय टाइम ऑफ, बिकॉज मुझे बहुत बहुत ही बुरा लगेगा कि अगर मैं बाहर जाऊं और मेरी वजह से कोई और इन्फेक्ट हो जाए, तो आई वांट टू जस्ट टेक सम टाइम। मीनवाइल अगर कुछ मतलब बाद में कुछ ऐसा आता है जो बहुत ही एक्साइटिंग हो, डिफरेंट हो, और मुझे ऐसा लगे कि मेरे को चैलेंज करे एज एन आर्टिस्ट, तो वही मैं कुछ करना चाहूंगा। मीडियम कुछ भी हो, मुझे उससे पहले भी कभी कोई फर्क नहीं पड़ा ना पड़ेगा। मैंने रेडियो भी किया है, मैंने मूवी साउथ में की है, टीवी भी किया है, तो मुझे मीडियम से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। किरदार बस एक्साइटिंग होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए।
जी जी, जिसे कहते हैं कलाकार को कला से रुझाव होता है, कि आपको कला जो है वो खींचती है, आर्ट फॉर्म खींचता है, तो आपको भी कला से रुझाव है, तो उसके प्लेटफॉर्म चाहे कुछ भी हो वो वैरी करे, लेकिन कुछ अच्छा होगा। तो बुक्स की अगर बात करें, मैंने कहीं पढ़ा सौरभ कि आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, आपको बुक्स अच्छा लगता है, तो बुक्स के बारे में आप थोड़ा बताइए कि किस तरीके की किताब आपको पसंद है पढ़ना?
मुझे ऐसा लगता है किताब में कोई भी तरीके की किताब हो, वो आपको कुछ ना कुछ देती है
जी,
अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखें तो। वो कोई भी किताब हो, ऑटोबायोग्राफी हो, फिक्शन हो, सेल्फ हेल्प बुक हो, देयर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक, लेकिन बुक बुक ही है जो सिर्फ आपको सिखाती है, आपको सिर्फ देती है। तो मेरे को कोई भी बुक मिल जाए और मेरे पास टाइम हो, तो मैं बस जब तक वो फिनिश नहीं होती तब तक मैं हिलता नहीं हूँ।
अच्छा,
अगर काफी बहुत बड़ी बुक हो तो फिर ऑब्वियसली 3-4 दिन में उसको फिनिश करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरे को बस पूरी फिनिश करनी है, फिनिश करनी है।
अच्छा अच्छा, मतलब किसी भी तरीके का बुक हो, पढ़ना आपको पसंद है, मेन पढ़ने का शौक है। और इसके अलावा हॉबीज में बात करें तो सौरभ आपको और क्या क्या पसंद है?
मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, खासकर सूफी म्यूजिक हो, क्लासिकल हो, वो सुनना बहुत पसंद है। पुराने सॉन्ग बहुत पसंद है, नए में भी पसंद है, लेकिन अगर, और वो भी मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो यही नॉर्मल से जो सबके शौक होते हैं वही शौक से भी है।
आपकी वॉइस, आप अभी जैसे बात कर रहे हैं, आपने म्यूजिक की बात की और आपके आपका वॉइस इतना खूबसूरत है, तो मुझे तो लग रहा है कि मुझे आपके वॉइस से कुछ सुनना भी चाहिए, तो ऑडियंस
नहीं,
जो हमारे लिसनर
है, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। मैं गाने का बहुत सुर का बहुत कच्चा हूँ, तो वो आप मुझसे मत भूलिएगा।
बिल्कुल, अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे आपका फेवरेट सॉन्ग के बारे में अगर बात करें, कि कोई पर्टिकुलर फेवरेट सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है, आपके दिल के करीब है, पुराने पुराने गीत या ऐसा कुछ?
वही, ये जब बात होती है ना फेवरेट की, तो मैं बड़ा कंफ्यूज
हो जाते हैं,
किसका कौन सा बोलूं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मेरे फेवरेट हैं।
जी जी जी,
तो उसमें किसी एक को चूज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
सही बात है, क्योंकि म्यूजिक म्यूजिक का अगर बात करें, म्यूजिक की बात करें, मैं म्यूजिक वोकल की स्टूडेंट थी, मैंने गुरु शिष्य परंपरा से इंडियन क्लासिकल सीखा हुआ है, तो हाँ जी, तो वैसे अभी सोशल वर्क की वजह से छूट गया, लेकिन मैंने तालीम ली रखी है। तो म्यूजिक की अगर बात करें, मुझे भी अगर किसी ने कभी कहा ना कि अरे अच्छा, आप एक तो मैं बताती नहीं हूँ, अभी मजे की बात यह है मैं छुपाने लगी हूँ, मैं किसी को जल्दी नहीं बताती, क्योंकि फिर अगर आप बोल दो तो आपको फिर गाने में बिठा देंगे लोग कि अच्छा कुछ, और वही प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या गाना है, क्योंकि इतना सारा कुछ है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत म्यूजिक के कंपोजिशंस है, तो आप किसी एक को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कि ये मेरा फेवरेट है?
बिल्कुल, इतने सारे फूल हैं, इतने अलग अलग उसमें सुगंध है, किसको चूज करें आप, तभी अपने आप में इतने उम्दा है।
बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी कि आपसे जुड़ने का मौका मिला, और आई एम रियली लाइकिंग द वे यू थिंक, मतलब आपकी जो सोच है वो बहुत क्लियर है, बहुत पॉजिटिव है, और जैसा शुरू में ही कॉन्वर्सेशन में आपने पीस के बारे में बात की, तो आपसे बात करके भी वो पीस समझ में आ रहा है कि आप कितने सॉर्टेड हैं। आपकी सोच जब दूसरों के साथ, मतलब जो सुनेंगे पॉडकास्ट हमारा, उनको जब पता चलेगा, जो जनरेशन है, क्योंकि अभी जनरेशन बहुत फास्ट चेंज हो रही है, तो जो यंग जनरेशन है, जो शायद वो 18 या 20 ईयर के हैं, या 21-22 इस एज ग्रुप में जो है, वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस रहते हैं, और बहुत ज्यादा उनका थोड़ा सा अलग तरीके का रहता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आपको कैसा लगता है ये जो एक सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा एक क्रेज चला आ रहा है, और जो जनरेशन है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं?
मेरी राय जो है वो ये है कि मैं कई बार देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो यूथ है वो बहुत जल्दी सोशल साइट से इन्फ्लुएंस हो जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, और बहुत जल्दी ओपिनियन मांगता भी है और देना भी चाहता है बिना किसी पेशेंस के। ये चीज मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से एकदम से ना ओपिनियन किसी से मांगनी चाहिए और ना अपनी देनी चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड टू थिंक ओवर इट फॉर द फैक्ट टू कम इन एंड देन से व्हाट यू हैव टू से एंड दैट टू विदाउट एनी जजमेंट। आजकल ये भी हो गया है कि अगर आप ओपिनियन देते हैं उसके लिए भी जजमेंट है, अगर आप नहीं देते हैं उसके लिए भी जजमेंट है, तो आप हर तरफ से आप बांधे जा रहे हैं।
मुझे लगता है कहीं ना कहीं काम को ज्यादा फोकस करना चाहिए, यू नो सर, आपको कैसे लगता है इसके बारे में? यंग जो,
बिल्कुल 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 सही आप कह रही हैं, अपने काम के ऊपर आपको काम करना चाहिए, ना कि आपके कितने लाइक्स हैं या कितने फॉलोअर्स हैं, इसके ऊपर मेरे हिसाब से तो ज्यादा ना सोचना चाहिए और ना उसके ऊपर काम करना चाहिए।
जी बिल्कुल बिल्कुल,
दैट इज व्हाट आई थिंक।
बहुत सही बात कही, मेरा तो बहुत अच्छा आपके साथ, मतलब किस्सों का सिलसिला चल गया और बातों का सिलसिला शुरू हो गया, वर्चुअली है, सामने होते तो शायद चाय पे चर्चा होती है। आई एम नॉट श्योर कि आप चाय पीते हैं कि नहीं, लेकिन मैं बहुत चाय पीती हूँ। और जब
नहीं मैं चाय पीता हूँ।
अच्छा, आप चाय पीते हैं?
जी,
तब तो
वो भी अदरक
डेफिनेटली। ओ वाह,
और अगर कुल्हड़ में मिले तो और भी अच्छा है।
अरे क्या बात, क्या बात, मजा आ गया। अरे
जब भी मथुरा वृंदावन में मैंने एक ट्रैवल शो किया था जिसके लिए मैं कई बार मथुरा वृंदावन जाता था, तो उसमें वहाँ पे नाश्ता ही, वहाँ पे कचौड़ी, वो आलू की सब्जी और कुल्हड़ की चाय, बहुत अमेजिंग होती थी।
क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच सौरभ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतना समय दिया और आपने हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आप तुरंत राजी हो गए, यू आर सो काइंड, और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ चर्चा करके। आशा करती हूँ कि बहुत जल्द हम फिर से किसी पॉडकास्ट में मिलेंगे। आपको कैसा लगा?
जी बिल्कुल मिलेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू, शुक्रिया मुझे आपको करना चाहिए कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में जुड़ने का मौका दिया, दिल से थैंक यू।
थैंक यू सौरभ।
अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमें जरूर बताएं, हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर @HTSmartcast। ऐसे और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन करें www.htsmartcast.com पर। HT Smartcast, सुनो नए नजरिए से।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल।
HT Smartcast।
I'm Annie Apple, and I'm here to invite you to come and listen to my new podcast series, Raising a Pro. It's the most intimate sports-related conversations you will hear. Each week, we explore the journeys of some of your favorite NFL players through the eyes of those that know them best. From Joe Burrow, DeAndre Hopkins, Myles Garrett, Ezekiel Elliott, Nick and Joey Bosa, just to name a few. With exclusive insights and information, we leave no stone unturned. Subscribe now to Raising a Pro on your favorite podcast app.